दिया, दाग दे दिया, रेखा फेंक दी और गले। राम ने कहा ये क्या किया तुमने, पिता कहाँ है? तो पिता तो वहां पर है, क्यों चले आए? तो उन्होंने ऐसा मेरे लिए कहा। तो तुम तो जानता नहीं, ये विवश नारी है, अबला नारी, उसको छोड़ करके तुम चले आए, जरूर कुछ अलग हुआ। चलो यहाँ आया तो देखा जो पिताजी अब डकर डकर लक्ष्मण जी को ये भी नहीं कहते तुम तुम्हारे वजह से, किंतु भावना तो है ये छोड़ करके चला है उसका मन। ये इतना बड़ा भारी रामायण का जो महाभारत ये हो गया किसके लिए हुआ?
पिताजी के
लिए, पसंद हो गए अनात्मक हो जब भगवान का भजन कर। अपनी दिग मत मारो, कभी दिग मारना भी मृत्यु है। दिग मत मारो, दिग क्या मारा जाते हुए दिग छोड़ा था, एक मनी को नहीं कंट्रोल होता है, इसलिए दिग मत मारो भजन करना है। और जीवा का कंट्रोल रखो, यदि जीवा का कंट्रोल रख लिया तो बाकी सब इंद्रिया तुम्हारे अभी, और यदि बाकी इंद्रिय नहीं यदि हुई इसे करो इत्यादि सबको सब भगवान का भजन भी सुच्चे कर सकते, किंतु यही पड़ेंगे। इसलिए इंद्रिय वैरी बढ़गा भक्ति मार्ग कंटक को चिंता छोटी छोटी कंटक है। प्रभु आज आप दया नहीं करेंगे हम चक्र भजन, कितना तो चिंता तो चाहिए, किंतु चिंता है इसलिए चिंता के लिए कारण ऐसी चिंता होनी चाहिए भजन में, तब ये भजन संभव। आज यही अनुसार सबके साधन भजन के संबंध में कल हम लोग वर्णन कर रहे थे साधक को अनुभूति हो कि हमारे कारणों से ही हम भगवान का दर्शन नहीं पा रहे, इसमें कारण दूसरा कुछ नहीं कोई नहीं, हम ही उसके लिए कारण। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारा भजन ठीक नहीं है, कुछ विघ्न बाधाएं हैं। एक तो कभी काल केवल कलह का ये केवल, और दूसरा हमारी चित्त वृत्ति भोगों में रहती है, तरह तरह के अनर्थ हमारे पड़े हैं, इसीलिए भगवान का भजन नहीं है और इसीलिए भगवान दर्शन की। पहले तो ऋषि मुनियों का भी दर्शन हो जाया करता था, वापस रूप तक सुना जाता है, नारद जी आए संत से भेंट किया, सुखदेव महाराज से किया, प्रहलाद से मिले, गुरु के साथ जहाँ पर भजन कर रहा था वहां चले गए, साधु संत लोग उपलब्ध थे, बिना कारण के किसी वो लोग वहां पर चले जाया करते, उनको उपदेश दिया करते, उनको उत्साह देते भजन में प्रवेश। कभी काल में ये भी संभव नहीं, लोगों को साधु संतों से विरक्ति हो गई है, क्योंकि अधिकांश साधु जितने भी हैं और मुनि कहा जाने वाले भ्रष्ट लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो सचमुच में भजन करते हैं, सब चीज का व्यवसाय होने लगे, ठाकुर जी की मूर्ति की भी व्यवस्था है, भागवत का भी व्यवस्था है, कीर्तन का भी व्यवस्था है, भजन के लिए नहीं ये सब चीजें, इसलिए लोगों का किसी पर विश्वास नहीं रहा है, ये भी भजन कर रहे हैं, सबको एक ही समान करेंगे, किंतु हाँ अभी भी है। तो सब साधन भजनों का मूल ये है कि कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति हो, राधा जी के चरणों में, ब्रजवासियों के चरणों में हमारी प्रीति। यदि ये नहीं है, भजन के द्वारा पैसा उपार्जन करें ये है, या भजन के द्वारा हम संसार में सुखी रहें, हमारा रोग दूर हो जाए, हम बड़े अशांति से हैं, इसे भजन करने से शांति हो जाए, भाई इसके लिए भजन मत करो। जब ये जन्म इस संसार में हुआ है, संसार से दुख को कोई नहीं मिटा देगा, ये कारागार है, कारागार में ये समझेंगे हमको कूलर मिल जाए, खाने के लिए कटरस भोजन मिल जाए, आराम से सोएंगे 9 बजे तक, और बड़े प्रेम के साथ में रहेंगे, तो कारागार में आए क्यों? कारागार इसलिए नहीं है कि आराम से सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे और शांति से रहेंगे, वहाँ जाने पर पुलिस अपने पैरों से जूतों से ठोकर मारेगा, गाली देगा, ब्लॉक करेगा, लस्सी खाने को मिलेगी, चक्की भी चलवाएगा, तरह तरह के दुख होंगे। यहाँ पर भी इस संसार में हम अपने को समझते हैं कि सुखी हो जाएंगे, ये संसार में रहते हुए कोई भी सुखी नहीं होने देंगे, भगवान की ये माया सबको पीस रही है, किसी न किसी रूप में सबको पीसेगी। इसलिए संसार में सुखी वही कोई हो सकता है ये संसार के सुखों को दोनों को एक समान समझ करके किसी से जरूरत नहीं, हमको भगवान के भजन करने से जरूरत है, बस यही आदमी सुखी होता है। संसार के लोग कहेंगे सौभाग्यवती भव आशीर्वाद में, और क्या मंगलम भवतु, पुरुषों के लिए कहेंगे मंगलम भवतु, और स्त्रियों के लिए क्या कहेंगे
अखंड सौभाग्यवती
सौभाग्यवती। क्या इस जगत में क्या लोग सौभाग्यवती हैं? सौभाग्यवती वही होगा जिसके पति कृष्ण है, जिन्होंने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व बना लिया, नहीं तो आज न कल न वर्ष में न 100 वर्ष में 150 वर्ष में ये सबको जुदा हो जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान का भजन करना सबके लिए जरूरत, तो ये अनुभव करे भजन करते समय हमारा मन नहीं लग रहा, हमको कितनी विघ्न बाधाएं हैं, कितनी विघ्न बाधाएं हैं आज चले कि भगवान में मन नहीं लगता। भगवान के लिए बेटा कहीं चला जाता है तो 2 दिन के लिए तो दुख होता है कहाँ गया, किंतु भगवान इतने दिन नहीं मिले उनके लिए कोई दुख नहीं है। ये भगवान का भजन करते समय ये यदि आज भगवान का दर्शन कब हो, आज तक मिले नहीं इतने दिन हो गए, कब मिलेंगे, तब इसको कहते हैं। और ये है नहीं कोई बराज आया नहीं, इतना दिन भजन किया कोई बराज नहीं है, तो क्या समझो बेकार का ये भजन भजन करना चाहिए। संसार से मन उसका थोड़ा सा विरक्त होकर के भगवान के चरण में, संसार के लिए अभी चिंता नहीं करेगा, भगवान की सेवा कैसे प्राप्त होगा, दर्शन कैसे हो, इसके लिए उसके हृदय में पीस चीज है, इसलिए उसको विरक्ति की जाए। इसलिए कहते हैं कल ये करता है वो भी आता रही है जैसे विरह है, जब कृष्ण मथुरा चले गए तो आई दीनदयानाथ हे मथुरा नाथ पदावलोक्य थे हृदय सब आलोक का करम वही धान्य। प्रत्येक साधक ये समझे भगवान के लिए विरह हो कि आप कैसे मिले, अभी हम लोग को यही समझना चाहिए हम ब्रज में हैं, कृष्ण चले गए कहाँ द्वारका, द्वारका से चले गए मथुरा, अब उनका दर्शन नहीं होगा, इसके लिए दर्शन भी है। यदि किसी को ये नहीं है, बड़े सुख से आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं और आराम के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और संसारी को दुख में दुख होने पर भी मिलाने लगते हैं, ये भगवान का भजन का तरीका है। ये सब दुख इसीलिए है कि भगवान का हम भजन नहीं करते, इसलिए भगवान को प्रेम के साथ करना चाहिए, दुख अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमको नहीं मिल रहे हैं। इसी चीज को श्रीमद् भागवत से दिखला रहे हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर, अहो विधाता विधातक तम कटित गया संयोज्य मैत्रण प्रणयी न देवी न तंश अक्षतार्थान विनुनक्ष आक्रम विचेतितम से अर्भवचेतितम यथा। कहें ये प्रसंग है श्रीमद् भागवत के 39वें अध्याय, जिस समय में अक्रूर जी गए हैं ब्रज में, संत ने उनको प्रोत्साहित किया, संत ने अक्रूर से कहा आप हमारे चचा जी हैं, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए, ये जो कृष्ण और बलदेव जो हैं हमको ऐसा पता चला है कि ये वसुदेव जी के लड़के हैं और देव जी, यही 8वें गर्भ का ये लड़का है, और किसी प्रकार से फल बल करके ये चला गया वहाँ ब्रज में और वहाँ पर पाला पालित कोशिश हुआ। उसी के हाथ से हमारी मृत्यु लिखी है, तुम हमको बचाओ मेरी सहायता। जरूर आपकी रक्त हम सेवा करेंगे, आप जो कहिए मैं करूंगा। तुम्हें एक बात करो और किसी पर हमारा भरोसा नहीं है, आप वृद्ध हो गए हैं, बड़े बुद्धिमान हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, मैंने सदैव आप पर भरोसा किया, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप चले जाइए और वहां जाकर के जो कृष्ण बलदेव हैं चतुराई के साथ में कल यहाँ पर ले आइए मथुरा में। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, इसको कहते हैं कंस टीला है, यहीं पर अखाड़ा था, उसका अखाड़ा तो था भूतेश्वर में, किंतु यहाँ पर प्रशस्त जमीन जमुना के किनारे पर ही थी, बाकी में जमुना बह रही और यहाँ पर विशाल जगह थी। इस जगह में यहाँ पर ऊंचा एक बनाया गया रंगशाला, रंगशाला कहते हैं कि यहीं पर कोई महोत्सव होगा, कुश्ती होगी, दंगल होगा, लोग सब आएंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कृष्ण को कैसे मारा जाए, अकेला जो कोई असुर उनको मारने के लिए जाता है ब्रज में, वो लौटता नहीं है, खबर देने के लिए भी नहीं आता ये क्या किया, इसलिए यहीं पर बुला करके सभी लोग मिल करके उसको मारेंगे। इसलिए तुम जाओ और नंद बाबा से कहो और उनके बच्चों से जो कल यहाँ शंकर जी यहाँ पर है रंगेश्वर महादेव, उनके उपलक्ष्य में सेवा के उपलक्ष्य में यहाँ पर दंगल होगा और उनकी पूजा होगी, इसलिए तुमको उन्हीं के बारे में सुना। यहाँ पर आकर के हम लोग व्यवस्था करेंगे। अप्रूव जी गए कभी आप तुम्हारे मरने में अब देरी नहीं, सांप एक पड़ा हुआ था और तुमने लेकर के उस सांप को
गले में लपेट दिया
और उसको छेड़ दिया, तो वो सांप क्या करेगा और कटेगा तो यहाँ और बचेगा नहीं। तुम जगह में सर्प को जो दूर में खेल रहा था उसको तुमने बुला करके और अपने गले में उसको धारण कर लिया, अब तो तुम्हारा मरना नहीं है। ये सोच करते जब ठीक है सर तो मरने पर लगे हो तो मैं क्या करूंगा, तुम तो मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई जाएगा। तो हमारा यह सौभाग्य है कि कृष्ण और बलराम जो ईश्वर हैं हमारे आराध्य हैं, उनका दर्शन तो वहां जाने से मिल जाए और ये सौभाग्य हमको मिलेगा, जो कहेंगे जो आपको मिल जाए और तब ये समस्या निधन होगा, इसलिए हमारी इच्छा है। ऐसा सोच करके उसे कहने से वहां जाकर के नंद बाबा से मिले और नंद बाबा से मिल करके नंद बाबा ने उनकी सारी व्यवस्था की। बलदेव जी ने मिले, बलदेव जी ने बड़ा आतिथ्य किया, उस समय सब बड़े हो गए हैं ना, बड़े हो गए और समझदार लोग हो गए, इसे इनको बैठाया, ये इनके हाथ जोड़ करके इनके लगते हैं चचा जी लगते हैं किंतु फिर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं और बलदेव जी ने इनका हाथ दोनों पकड़ करके अभिवादन करके इनको बैठाया, बड़े अच्छी तरह से बातचीत किया और इनके पैर दबवाए और खिलाया पिलाया। जब ये सब हो गया तो नंद बाबा भी उनसे थोड़े से बात किए, इसके बाद नंद बाबा जी चले गए, सुने की आप कल बातचीत करें और ये दोनों बच्चों को एकांत में पा करके और उनसे बातचीत करेंगे। देखो तुम्हारे मैया बाप को पहचानते हो, मैया बाप नंद जी हैं और यशोदा जी हैं, नहीं ये भूल जाना, तुम्हारे मैया बाप हैं वसुदेव जी और देवकी, और तुम्हारे लिए जेलखाना ने उनको बंद किया और इतना कष्ट दे रहा है। इस विषय को सब लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं इस विषय, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया, उनके सब लड़के तुम्हारे भाइयों को मार डाला और उनको अभी तक जेल में बंद रखा है, और उनको मार डालने की रोज धमकी देता है। यदि कल तुम नहीं गए तो कल समझ लो कि उनका अंतिम दिन है, उनको खत्म। अब तुम लोग समर्थ हो, आप जगत के ईश्वर हैं, आप इच्छा करने से वो कंस मारा जाए, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए आप लोग चल करके कल ही कंस का वध कर। ऐसी सब रात भर प्रयोजना देते रहे और ऐसी बात कहते रहे जिसे कि इनको क्रोध हुए। बलदेव जी को और कुछ को सचमुच में हमारे भले ही पिता माता न, किंतु बलदेव जी के तो पिता माता हैं और उनको इतना कर सकेता है। बलदेव जी हमारे सखा हैं, हमारे भाई हैं, इसलिए हमको जरूर करना चाहिए। दोनों भाई करेंगे रात में इसकी सदर नंद बाबा जी इनकी बातों को सुन करके घोषणा कर ब्रज में चारों तरफ में घोषित हो गया। यह अब आज ही सवेरे में कृष्ण और बलदेव को लेकर के अशुरू की जाएंगे। नंद बाबा भी अपने साथियों को लेकर के वहां पर जाएंगे और फिर वहीं पर रंगशाला देखेंगे और अपना बातचीत कर भी दे आएंगे और देकर के गोपियों को मालूम हुआ। कृष्ण में जिसका जितना अभी प्रेम है उतना ही उनके लिए दुखी है। इन लोगों को भी दुख है कि कृष्ण जा रहे हैं, किंतु किसी ने अनुमान ये नहीं किया कि कृष्ण वहीं पर आ सकते हैं, किंतु गोपियों ने अनुमान किया। इन बूढ़ों की अकल खराब हो गई, इतने बूढ़े हैं कोई भी मना नहीं करता। और जो नंद बाबा इत्यादि हैं जो बूढ़े अभी नहीं हुए हैं, ये लोग भी जाने के लिए तैयार देखते हैं। सखा भी इनके साथ में जाने के लिए तैयार, इनको ये पता नहीं कि हो सकता है हम तो गवान लड़कियां हैं और वहां पर बड़ी शिक्षित पढ़ी लिखी बुद्धिमान और सब प्रकार से रूपवती साज श्रृंगार करने में से वहां की जो लड़कियां होंगी ये इनसे मिले मिल करके इनके बच्ची सीखे। इस तरह फिर लौटेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, इसलिए बड़ी दुखी हो गई। उन्होंने यशोदा जी को बहुत से उलाहना दिए, जब देखा कि कोई नहीं उनको मना कर रहा तो खुद ही ये वहां से चली और कृष्ण से ये बोलने के लिए तैयारी। ये लोग नहीं कहेंगे, एक कोई कह रही है सखी देखो हम लोग अभी जाएंगे तो यह बात छिपी हुई थी कि हम लोग उनको प्रेम करते हैं। अब तो सभी लोग जान जाएंगे चाहूंगी यार वो इतना प्रेम है कि ये जा रही थी ये रो रही और इनको जाने नहीं देती, तो ये बात व्यक्त हो जाएगी। दूसरे का तो व्यक्त हो जाएगी तो कब तक हमारा क्या जाएगा। वैसे तो हमको यदि चले जाएंगे तो वैसे ही तो मर जाना है, हम लोग बीच नहीं रहते। तो बात व्यक्त हो और न हो, या तो ये रह जाएंगे तो हम लोग को जीत रहेंगे और यदि चले गए तो हम लोग बन ही जाएंगे, तो फिर कहने सुनने वाला कोई रह नहीं जाएगा। और यदि यहाँ रहेंगे तो हम लोग जीवित रहेंगे, इसलिए किसी भी हालत में हम लोग चल करके यदि नहीं मानते हैं हाथ पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, उनके कपड़े पकड़ लेंगे नहीं जाने देंगे, हरक को भी नहीं जाने देंगे, जैसे तैसे उनको हम मना करते हैं। उन समय में ये कह रही है मनी मन में गोपियां कर रही हैं, अहो विधाता विधातक समन दया, हे विधाता तुमको कहीं दया नहीं है, क्यों विधाता को क्यों कर रही है, जिसने हम लोगों को मिलाया वही जो मिलाया वही अब हम लोगों को अलग कर रहा, इसलिए दूसरा इसमें कोई दाई नहीं, दूसरे किसी का हाथ नहीं, हम लोगों का ऐसा ही है भगवान की इच्छा से या काल के प्रभाव से हम एक साथ परिवार में 10 20 25 आदमी एकत्रित रहे हैं और फिर काल के प्रभाव से फिर हम लोग अलग 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 हैं। अभी बंगाल में या पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, परिवार के परिवार कितने मर गए, कितने भी छुड़ गए जो अभी आज तक फर्क कर नहीं। ऐसे ही यह आदमी मर जाता है, फिर हम लोगों के परिवार में फिर आकर के फिर मिलेगा, कोई गारंटी है? कोई कुछ नहीं। जैसे कि नदी में बाढ़ आती है और एक जगह का मिट्टी कट फट करके और एक जगह टापू बन जाता है और फिर वही कट करके न जाने कहां कहां चला जाता है। अभी बंगाल में एक बाढ़ है, एक स्कूल में बहुत से लोग, कोई उत्तम रहा था, एकत्रित हो रही 400-500 लोग थे, वो वहीं पर रह करके और उत्सव मना रहे थे। इतने नहीं, इतनी बड़ी जोर से बाढ़ आई, गिर गए, पानी बहने लगा के छत पर सभी लोग चले गए 400-500 बार, और वो बाढ़ इतनी भयंकर हुई घर को गिरा करके छत समेत बहकर। जब बाढ़ चला ना और सब लोग त्राही त्राही करने लगे, उसमें एक आदमी भी एक आदमी से मिलाती लगे कहाँ 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 चले गए, कोई मर गए, कोई कहाँ गए। इसी तरह से ये संचार चल रहा है, इसको करने वाला कौन है? इसलिए दूसरा कोई नहीं है, या तो हमारा अपना कर्म है, इसी को कहते हैं काल। तो ये काल के द्वारा ये कभी कभी मिलते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। गोपी ने सोचा अभी कल हम लोग मिले और आज हम लोग छूट रहे, इसमें किसका दोष है? हम लोग तो चाहते ये भी नहीं अलग अलग होना, हम लोग मिलना भी नहीं चाहते थे, किंतु भगवान की चाहते, काल की चाहते हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। अहो विधाता, आप तो संसार की रचना करने वाले हैं, आप ही संसार को नियमित करते हैं, आपको कभी दया नहीं है, कभी भी दया नहीं। संयोजमत्रा प्रणयी नदी, इन देवियों को आपने मित्रता के द्वारा और प्रणय के द्वारा, यहाँ पर मित्रा माने सख्य सख्य भाव, हम लोग को सख्यों के रूप में और सखा के रूप में हमको आपसे मिला है। और प्रणय प्रणय के द्वारा और भी जोर दिया है, दोनों के प्राण एक कर दिए प्रणय, और मिलने के बाद में हम लोग अभी अकृतार्थ रहे, अकृतार्थ अकृत और भान, मिलने में क्या होगा? प्रेम से रहेंगे ना, परस्पर परस्पर को प्रेम करके उसमें सुख का अनुभूति करेंगे, ये आपने होने नहीं दिया पूरा, उसके पहले ही क्या कर दिया? नक्ष पार खत्म, अलग अलग कर दिया हम दोनों को, कृष्ण को हमसे छीन लिया, और पार खत्म, पार खत्म मैंने किया और खत्म, पार खत्म मैंने अलग करना नहीं, अर्थकम अर्थ को काट दिया, मेरी जो भी लाश आती, हम लोग की अभिलाष आती, प्रयोजन जो था, क्या प्रयोजन था? हम लोग मिलकर के परस्पर सुखी रहेंगे, यही हमारा प्रयोजन था, तो ये प्रयोजन को ही आपने नष्ट करके व्यस्त कर दिया। नीचे चितम, ये आपकी जो चेष्टा है, आपकी चेष्टा नहीं सब कुछ व्यर्थ कर दिया। कैसे? यदि किसी को पता हो ये विधाता, विधाता मैंने यहाँ पर ब्रह्मा ऐसा ही करता है, ऐसे ही मिलाकर के फिर विजुक्त कर देता है और इच्छा पूर्ण नहीं होने देता, प्रयोजन सिद्धि नहीं होने देता, तो कोई प्रीति करेगा तो संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रहलाद चरित्र में यहाँ पर हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसके बाद में उसकी स्त्रियां जो रो रही हैं, तो वो ऐसे ही रो रही आप आ रही। आपने ये क्या किया, मूर्ख जैसी बातें आपने क्यों की। अभी एक छोटा सा बच्चा है वो थे और हमको उनसे अलग कर दिया, वो मर गए हम अलग हो गए। यदि आपकी यही रीति है तो लोग समझेंगे कि हमारा बेटा भी चला जाएगा, पति चला जाएगा, तो किसी के साथ में कोई प्रेम नहीं करेगा, तो ये आपका संसार ये आपको पता नहीं। किंतु आपको ये ज्ञान नहीं, इसलिए आपकी चेष्टाएं हैं मूर्खों की भांति या बालक की भांति, बालक की इच्छा ना हो, आपका संसार ऐसी तरह से नष्ट हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर यही कार्य है कि हम लोगों का जो प्रयोजन था मिलाया आपने, मिलाने के बाद में विशेष आपकी ये जो चेष्टा है संसार की रचना करते हैं, उसे किसी को मिलाते हैं और मिला करके अभी अतृप्त अवस्था में इनको अलग अलग कर देते हैं। ये आपकी चेष्टा है, अर्धम चेष्टित बाल चेष्टा है, इसे तो संसार कर नष्ट हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को देकर के ये कार्य है, क्यों भविष्य के लिए ये हमको छोड़ करके चले जाएंगे, फिर वहां से लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए ये ऐसे ही साधक क्या करेगा, साधक इसके द्वारा सीखेगा, इनके पीछे वाला जो वियोग है ऐसा ही वियोग हम लोगों के अंदर भी हो, भगवान के लिए ऐसे तीव्र वियोग हो और भजन यदि करेगा तो भगवान पाए जा सकते हैं, अन्यथा भगवान ऐसे नहीं पाए जा सकते। जस्यानुराग ललित स्मित बल सुमन अंत में ये कह रहे हैं जस्यानुराग। कृष्ण का हमारे प्रति उनका स्मरण होने लगा, राग का प्रसंग उनके आंखों में फूट पड़ा और वो चिंता करने लगे। जस्यानुराग ललित स्मित, राग के समय में कृष्ण का हमारे प्रति ऐसा अनुराग कि अनुराग के द्वारा बंसी के द्वारा हमको बुलाया अपने पास में, और उस समय उनकी जो कथाएं थी बातें थी ऐसे प्रेम भरी थी कि तुम लोग घरों को लौट जाओ। वो मंद मुस्कान के साथ में कह रहे हैं जिसका द्वारक है वो क्या समझ ही न सकी। द्वारक माने जाए कि न जाए ये ठीक से नहीं करे, करें ये जाओ, किंतु हंसकर के क्यों कर रहे और हमारे तरफ में इस प्रकार से देख कर के क्यों कर रहे। इसलिए वो समझ नहीं सकी कि इनका मतलब क्या है, इसलिए बहुत कृष्ण बहुत कुछ कहे तब तक वो प्रतीक्षा करके देखती रही। कभी नहीं आया ना तो गोपियां ही परीक्षा कृष्ण को करने लगी, अच्छा तो देखे इनका मतलब क्या है, तब फिर उन्होंने कहा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं जस्य अनुराग ललित स्मित, जिनका अनुराग ललित स्मित राज के समय में, ललित स्मित माने ललित माने मनोहर, मनोहर ललित और भी है, जहाँ मुखों की मुख का चारुता हो, मंद मुस्कान हो, आंखों में कुछ भाव हो और प्रत्येक अंगों की कोमलता को उसके द्वारा व्यक्त किया जाए, तब इसको ललित है। ललित का ये मुख की चारुता हो, अत्यंत मुख की भंगी बड़ी सुंदर, अंग भी खूब कोमल हो और अंगों से भी कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जिसके अंदर में कुछ भावना है, आंखें भी मानो कुछ कह रही हैं, भावनाएं कुछ कह रही हैं और देखने वाले को सबको आकर्षित कर रहे, उनका प्रत्येक चीज बड़ा मनोहर सुंदर, तो इसको कहते हैं ललित। इसीलिए ललित शिवभंगी भी है, ललित चांदनी है, ललित उनका सब कुछ है। उसमें ललित स्मित मैंने मंदहास्य बल्गु मंत्र, बल्गु मंत्र मैंने बल्गु मानी परम सुंदर मोहन, और मंत्र मैंने क्या है बातें वार्तालाप प्रश्न इतना मनोहर जो हम लोगों को आकृष्ट कर। क्यों आई है रात में, क्यों आई, आने का मतलब क्या? तो जब किसी ने बोल उसका पूर्णिमा का चांद देखने के लिए आई, नदी देखने को आई, तभी कुछ नहीं बोली, उसको जन करने के लिए यहाँ पर आ गई। इस तरह से बातें कर रहे हैं। और भी 32वें अध्याय में गोपियां क्या कर, गोपियां भी प्रत्युत्तर कर रही हैं, आपका प्रेम कैसा है, कन्यागिरी का आपका प्रेम है कि कैसा प्रेम है, साधु प्रेम है, आपने जो प्रेम करता है उसके बदले में प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करते तो भी प्रेम करते हैं, और कुछ क्या प्रेम करो ना करो कभी नहीं, कि आप इसमें से कौन है? कृष्ण ने कहा जैसे मैं इनमें से कोई नहीं हूं, किंतु किसी में किसी में है, ये सब चीजें उनमें है। जो प्रेम नहीं करता उसको करते हैं कि नहीं करते हैं, जो करे न करे वो सबको भी प्रेम करते हैं, ऐसा भी है, यही उन्होंने अंत में दिखलाया। तो इस प्रकार से बल्गु मंत्र इसको कहते हैं, अपनी बातों के द्वारा प्रेम भरी बातों से जो दूसरों को आकर्षित कर लेता है, आपने आकर्षित हम लोगों को किया, लीला वालों लीला पूर्वक हमारे तरफ में देखना, परिरंभन परिरंभन में हाथों में हाथ लगा करके नृत्य करना इत्यादि सब, राष्ट्रगोष्ठियां राष्ट्र की गोष्ठी में ये सब आपने किया। उस समय हम लोग नीतात्मा नखननी व खनदा दिया, उस समय में ये खनदा, खनदा माने उत्सव देने वाली जो रात थी, खनदा माने वो रात जिसमें आनंद देता, यह रात का की रात जो थी वो खनदा थी, किंतु वो जो खनदा थी खननी व खन नहीं मात्र नहीं, ब्रह्मा की एक रात लाखों वर्ष, इसी तरह से गोपियों को मालूम हुआ क्षण भर नहीं, अब वही खंडा जो आने वाली है आज के बाद में, आज की रात खंडा माने जो अब चली गई क्षण में, अब वो खंडा उत्सव रहित हो गई, और वही रात को अब हम आपके बिना शांत तम बिना आपके बिना हम कैसे काटाएंगे, ये चिंता करते करते वो आतुर हो गए। गोप्य कथम नति करें मतमो दुरंतर, आपका बिना रूपी जो अंधकार है घोर अंधकार ये घोर रात अब खनी एक कल्प के समान हो गया, उस रात को अब हम कैसे बिताएंगे आपके बिना, कथम अब बताओ। इस प्रकार से अत्यंत विरह में किसी प्रकार से भक्त हो ऐसी भावना होगी, ये सब कम मिलेंगे, एक क्षण भी कल्प के समान जब इतने लगेगा, जैसे कि दिन मंगल इत्यादि को हमारे गोस्वामी लोगों को ऐसा होगी, ऐसे किसी दशा में होगी उसी समय में भगवत दर्शन संभव है, इसके पहले भी अंततः दुख तो होना चाहिए, ये भगवान के बिना हम दुखी है, भगवान का भजन ठीक से नहीं होता है, इसलिए उसके लिए इतना यद्यपि संभव नहीं है किंतु कुछ तो जरूर होना चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर जी कहते हैं गोस्वामियों का वाक्य, जदा जातो गोपी हृदय मदनो नंद सदना मुकुंदो गांधीन्य सनमनुरुंधन मधुपुरी तदा आख्यान चिंता सरती मन गुरुणा परिचय राधा धायन राधा मन परती राधा दिय। गोस्वामी वाक्य को कह रहे हैं कि जदा जातो जब हरि कृष्णचंद्र जी नंद नंदन नंद सदन से नंद गांव से नंद भवन से निकल करके मधुपुरी में चले गए प्रदेशारी गला मधुपुरी अपरूप सहित जब गेला तबे राधा जी रहनी घन भूमि कर रंगीनी चिंता जले अगाधे पड़ जाए। उस समय में अगाधायन बाधा मैं पयती राधा विरहनी
राधा विरहनी
अगाध विरह के समुद्र में वो इन श्लोकों को याद करके स्मरण करके भजन के बीच बीच में इस प्रकार से सब लोग इसकी चिंता करें। पूजन देवी ने भी बताया पूजन देवी बनी राधा जी जो बिरानी है इनका कुछ वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है क्या गया समर गीत में कैसे इनको गिरफ्तार गोपियां को कैसे गिरफ्तार उद्धव जी जब गए तो उन्होंने कुछ लक्ष्य किया था। पूजा देवी मणि में उनकी दशा का इस प्रकार से वर्णन किया गया है चिंता अस्त्र जाग जाग रहो उद्वेग हो तान और मलिन दशा त्याग मानो मोह मृत्यु दशा कृष्ण के बिरहने राधा जी की और गोपियों की दसों दशाएं दस प्रकार की जो दशा होती है वो दशा क्या जागर कृष्ण चले गए उनकी नींद भी उनके साथ में चली जाने के बाद में फिर सोई नहीं और एक थी विरह में मुठ्ठा मुठ्ठा भी मुठ्ठा कभी कभी रहती थी वो भी करीब करीब चली गई चिंता चिंता सप्तम उन्हीं की चिंता उद्वेग सप्तम उद्वेग कृष्ण आएंगे कि नहीं सात तो गए हैं किंतु सप्तम अंतर तानो अंग मलिनता अंग की मलिनता तान मन क्या क्षीण हो जाए एकदम सूख जाए राधा जी और गोपियां भी कृष्ण के दिल में सभी लोग अब बचेंगी कि मरेंगी ये भी कोई ठीक नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी खाते पीते क्यों नहीं थे शौक से नहीं अब दराजे करके नहीं विरह के कारण स्वभाव ही क्यों का हो गया किसी का कोई आदमी एक लड़का घर से निकल करके चला जाए और माता पिता क्या करेंगे अब खाना पीना अच्छा लगेगा अच्छा नहीं ठीक वैसे ही विरह में रघुनाथ दास गोस्वामी या भक्त लोग खाना पीना सोना इत्यादि सब अपने आप उनका 24 घंटा भगवान का चिंतन भजन साधन है। हम लोग तो एकादशी को भी आराम के साथ में खाना पीना सोना सभी कर सकते उन लोगों का स्वाभाविक रूप से ही ये सब चीजें हो जाती क्षणता मलिनता स्नान नहीं करते समय में दिन रात रो रहे हैं अंग में भूल भुतरी और ब्रज में तो विशेष करके अंधी और ये सब आता है भूरी तक लग जाती है इधर में उनका ध्यान ही नहीं है अंग की मलिनता सूख गए हैं प्रलाप सप्त में गोपियां प्रलाप बक रही परमी से कृष्ण गोचारु को गए देखा अब तो ये करी जैसे हाँ हाँ गए वैसे ही गोपी आज जो जानते हैं जो जिनको भी होश है वो जानते हैं वो तो चले गए कहा मथुरा मथुरा की बात है इनको कुछ स्मरण ही नहीं महाप्रभु जी ऐसे ही सप्त में भाव में भी बोल रहे हैं यहाँ पर भी गंभीरा नहीं था भक्त लोगों का भी ऐसे ही भाव में भी बोल हो जाते हैं उन्माद और व्याधि व्याधि ना क्या बुखार नहीं क्या यह सब व्याधि मोह उसका समय वो हो जाता है, मृत्यु मुख्या हो जाती है। दस दादा ताना राधा अतुले सुधी वाई वूले गोपियों को और आगा जी को कृष्ण के जीवन में ऐसी दुख की अवधि तक प्राप्त बड़ी दुखी भगवत भक्त भी भगवान का भजन करके कृष्ण का विवाह अनुभव करें। कर्म का भजन करते करते किसी कृष्णा ही निर्मल होगा, उतना ही ऐसा होगा और होने पर भगवान भी निकट आते चले। जब आप सहा नहीं जाएगा प्रेम की अंतिम अवधि में तो अपने आप दर्शन करें। बाद में प्रेम होता है, कोई साधक यहाँ पर उस स्थिति में दो प्रकार से विचार करता है। भावावस्था दो प्रकार की होती है, भावावस्था परिपक्व हो जाने पर वो बिल्व मंगल इत्यादि की भांति सत्य में पीड़ा की अनुभूति उसमें हो। कब कृष्ण कैसे मिले, उनकी सेवा कैसे होगी, सत्य में इसी का वो चिंतन प्रेम की परिपक्व। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं साधु, जैसे बिल्व मंगल जी हैं। पहली स्थिति में कैसे उनकी कृपा हमारे ऊपर में होगी, कब उनका दर्शन होगा इत्यादि विचार करते उसके लिए पूर्व राग जैसा विरह की अनुभूति करते हैं, तर्क कराते हैं। भाव फक्त पहली स्थिति में उतना नहीं तर्क कराए, शक्ति वाला कुछ कुछ और उससे अधिक भाव भक्त वाला निष्ठा रुचि में वो तड़पड़ाहट नहीं रहती, केवल उस समय में साधन के लिए कुछ खटपट भाव बना रहता, कैसे साधन और उससे अधिक उन्नत होने पर भावावस्था में भगवान से मिलने की और उनकी सेवा प्राप्ति की अभिलाषा होती है। दूसरी बात, जब कि वो थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है, जैसे पहली स्थिति में नारद जी का है, ध्रुवों का भी कुछ कहा जा सकता है, भगवान के लिए छटपट कर रहे हैं, जब नहीं रहा गया भगवान ने झलक कर दोनों को। ध्रुव जी को पास वो कर देकर के जब अंतर ध्यान हो, और उनको नारद जी को केवल दर्शन देकर के झांकी देकर के चले गए, दोनों अनुतप्त हो रहे हैं, दोनों अनुतप्त वो भी बहुत अनुतप्त हो रहा है। इसलिए कि संसारिक चीजों को देकर के हमको थक दिया प्रभु ने, और वो छटपटा रहे हैं, प्रभु एक सेकंड के लिए दर्शन देकर के चले गए, संसारिक उनको कोई चीज नहीं दिया, छटपटाहट दे गए और वो सड़सठ कर रहे हैं। अंत में उनको प्रवेश करने के लिए कहा कि इस शरीर में अब मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूँ, क्योंकि कर्म के द्वारा ये शरीर प्राप्त है और उसमें जब तक कुछ भोग नहीं रहेगा तब तक साधन भजन नहीं रहेगा। अब तुम्हारे अंदर में कुछ भोग की कामना है, क्या है? सात्विक कुछ भोग करने की इच्छा है, वो क्या? निर्जन मेरा करके भगवान का भजन करें,
निर्जन
बात, निर्जन बात क्या? और वो तो एकदम सीधा साधा उनको पीछे में उनको दे दिया जी को, और उसमें रह करके छटपट करो, और इनको पीछे तो नहीं दिया। अच्छा, सात्विक जगत में उनको निर्जन स्थान देते हैं भजन करो, और निर्जन जगह में साधु करते हैं विश्व में जहाँ सर्वत्र और भगवान की लीला करते। जब वो भी उनका छुप गया ध्रुव का भोग के द्वारा उसको हटाया, हटा करके भी वो अपना वैकुंठ धाम नहीं दिया। भगवान ने एक प्रधान चीज है और लोगों के आराध्य में और भगवान आराध्य होने पर भेद, और देवता देवी आराध्य होने पर उनको जो भोग देने अंत में अंत तक उसी में रह करके फिर जाया जाता गिर जाए। और भगवान के जो भक्त हैं भले ही विषय मांगे विषय भी दे करके भोग करा करके अंत में उसको